वो होती है गुरु की शरणागति। प्रैक्टिकल तौर पे कहा जाए तो मानव जीवन में सबसे बड़ी बात है गुरु की शरणागति और गुरु का संतुष्टि। आपने जीवन में कुछ भी किया होगा ना, कुछ भी अगर किया होगा, लेकिन आपके कार्यों से गुरु प्रसन्न है और आप गुरु के शरण में हैं, आपके सारे दोष सारी त्रुटियां सब माफ किए जाएंगे। भगवान भी देखेंगे नहीं उसकी तरफ, आपने क्या किया है, क्या गलत किया है, क्या अच्छा किया है। एंड में अगर आपने गुरु को संतुष्ट कर दिया, गुरु जी बता रहे हैं उनके स्पीच में कि यस प्लीज गुरु एंड वैष्णवास, एक बार नहीं बोला, अनेक बार बोला, उसके ऊपर क्या चाहिए आपको लाइफ में, क्योंकि अस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, ये अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, अब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको भक्ति देंगे। इसलिए अल्टीमेटली ना हम लोग किसी के जीवन का अगर बैठेंगे ना ऑडिट करते हुए तो बहुत चीजें मिलेगी आपको, कोई गलत भी किया था, अच्छा भी किया था, ये भी किया था, वो भी किया था, कोई नियम भी तोड़ दिए थे, बहुत सारा चीज मिलेगा आपको जीवन में। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंड में क्या स्थिति आपकी थी और एंड में जो भी स्थिति आपकी होगी, क्या गुरुजी आपसे प्रसन्न थे, वॉज ही हैप्पी, देन एवरीथिंग सक्सेसफुल। उसके बाद में अगर आपको गोलोक धाम भी प्राप्त नहीं हुआ तो भी आपका जीवन सफल है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में जो होगा वो गुरुजी के और भगवान की इच्छा से आपके जीवन में होते रहेगा। दोबारा आएंगे तो भी आपको भगवान की सेवा में ही रहेंगे। इसलिए भक्त परवाह नहीं करता है ना कि मुझे गोलोक में जाना है, वापस से आना है, ऐसे भक्त परवाह नहीं करता है। वो बोलता है मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी तोई, कहीं भी रखो आप, आपकी सेवा में रखो, मेरे लिए वही मुक्ति है, वही गौलोक है जिसमें आपके भक्तों की और आपकी सेवा मुझे मिलती रहे। साक्षात शरीर से मैं गौलोक में ना रहूं तो भी चलेगा, क्योंकि वो भी फुल प्रूफ नहीं है। जहां पर सेवा है वहीं पर आप फुल प्रूफ सेफ हो। सेवा ही सबसे बड़ा वैक्सीन है जो माया से बचाएगा। तो एक उत्तर आपका ये भी है कि जब तक आप गुरु और वैष्णव सेवा में लगे हो आपको दुनियादारी का असर नहीं होगा आपके ऊपर।
एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एग्जैक्टली भगवान को क्या चीज अट्रैक्ट करता है,
वही वैष्णवों की प्रसन्नता। इफ यू हैव प्लीज वैष्णवस दैट इज मोस्ट प्लीजिंग टू द लॉर्ड मोर देन हिज प्लेजर ऑल्सो। भगवान को आपने अगर भगवान को आनंद दिया होगा उससे भी ज्यादा आनंद भगवान को वैष्णवों को खुशी देने से होती है, और वैष्णवों को आपने संतुष्ट किया होगा तो भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। अलग से आपने उनको संतुष्ट करने का प्रयास नहीं भी किया होगा लेकिन वैष्णवों को संतुष्ट किया होगा तो भगवान उससे ही रिझ जाते हैं। जैसे आपके घर में आया और मैंने आपको कोई तारीफ नहीं किया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन बच्चे को बहुत प्यार किया, बच्चे को बहुत गिफ्ट दिया, तो आप बोलेंगे नहीं मुझे कुछ नहीं दिया आपने, ऐसा नहीं बोलेंगे आप बच्चों के संतुष्टि में ही आपको संतुष्टि है कि इसने आके मेरे बच्चे को संतुष्ट किया। जैसे हमारा ये स्वभाव है वैसे भगवान का भी वही स्वभाव है। उनके बालकों पर जो भक्त है उनके निजी उनकी प्रॉपर्टी है उनको आप प्रसन्नता देंगे। गुरु जी भी ऐसा देखेंगे नहीं कि मुझे पसंद कर रहा है क्या, वो बोल रहे हैं कि वैष्णव को पसंद करेगा तो गुरु जी भी खुश हो जाते हैं, और गुरु जी खुश हो जाए भगवान को खुश नहीं किया तो गुरु जी को खुश देखते हुए कृष्ण खुश हो जाते हैं। ये सब लोग निस्वार्थी हैं, वो खुद के लिए कुछ सोचते नहीं कि मुझे कुछ नहीं किया, सब लोगों को किया, सबको जलेबी दिया मुझे नहीं दिया, वो आदमी भक्त नहीं है। भगवान उनके विपरीत हैं, मुझे नहीं दिया लेकिन मेरे प्रिय व्यक्ति को दिया तो संतुष्ट हो गया। वॉट एवर इट टेक्स टू प्लीज अ डिवोटी, किसी को मिठाई देने से खुश हो जाएगा, किसी को चरण दबाने से खुशी होगी, किसी को उसका प्रोजेक्ट में सहायता करने से खुशी होगी, किसी को आपको आपका जप देख के खुशी होगी, किसी को आप गुरु जी का आज्ञा पालन कर रहे हैं देख के खुशी होगी, क्या किसी को क्या वैष्णव का क्या कहना। तो यही हमारी पूंजी है, अगर हमने संतों को वैष्णवों को खुश किया ना वही हमारी पूंजी है, वही हमारा धन है। दिस इज ओनली वेल्थ वी हैव गॉट। अगर हमारे जाम नाम पे अगर ऐसे वैष्णवों की संतुष्टि आपके नाम पे है तो आप सबसे बड़े वेल्दी हो, चाहे आपके जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो, आप एकदम सुदामा जैसे हो, कोई पैसा ही नहीं आपके पास, लेकिन आपके पास अगर वैष्णव की संतुष्टि आपने कर दी है आयुष्य में, तब सबसे धनवान आप, भगवान उसी से प्रभावित होते, संत की खुशी चाहते हो। तो ये न कहने प्रकार न कभी भी आप कोशिश करो कि भक्तों को खुशी मिले आपकी तरफ से, क्या चाहे कि भोजन बनाने के रूप में मिले, चाहे कोई कपड़े धोने के रूप में मिले, चाहे अप्रत्यक्ष रूप में इनडायरेक्टली कहीं मिले, लेकिन कहीं भी आप रहो भक्तों की सेवा में रहो, या सेवा वाले प्रोजेक्ट में रहो। वे आप लोगों को सबको शायद डायरेक्ट सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्ट गुरुजी को भोजन बनाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुजी का जो प्रोजेक्ट है जिसमें वो इतनी बड़ी सेवा का आयोजन किया है, उसमें आपको सेवा मिल गई तो भी आप गुरुजी की सेवा में हो। क्योंकि अभी 5 पांडव थे, उसमें से 5 पांडवों के रथ पे भगवान को बैठना मुमकिन था क्या? किसी एक पे रथ पे बैठेंगे ना, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों ने भगवान का सेवा नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति भगवान के साथ बैठा हुआ है, उसको भगवान डायरेक्ट गाइडेंस दे रहे हैं और बाकी लोग उनके द्वारा निर्देशित युद्ध में युद्ध कर रहे हैं, सब लोग से भगवान प्रसन्न थे, है ना। धर्मराज के रथ पे मैं ही बैठे थे सारथी बनकर, लेकिन भगवान ने जो पूरा युद्ध निर्देशित किया था उसमें ही लड़ रहे थे ना, वो उसी गाइडेंस में लड़ रहे थे, रात को जो डिस्कशन हुआ, वो जो भी निर्णय हुआ उसी को पालन कर रहे थे। एक रथ में बैठकर सुन रहा है, एक रात को मीटिंग में सुन रहा है कि कल क्या करना है, वो बोले जाओ अभी विष्णुदेव से पूछ के आओ कैसे मरेंगे वो, तो उन्होंने फॉलो किया। भगवान ने बोला अभी बोलो नरोवा कुंजुरोवा, जैसा बोला वैसे किया, सब लोग यशस्वी हैं। इसलिए इधर एक लाइन पढ़ रहा था मैं भी मोबाइल में, सेवा भाव से आसक्त रहो, सेवा से आसक्त मत रहो। इसका मतलब क्या है कि मुझे ना बस खाना बनाने की सेवा चाहिए। आप बोलेंगे आज आपको खाना बनाना नहीं है, आपको मंदिर में झाड़ू लगाना है, पोछा मारना है, तो आप बड़े उखड़ जाते हो। नहीं नहीं, मतलब आपको एक पर्टिकुलर ही काम करना है आपको, लेकिन हमको उससे ऊपर उठकर सेवा से, सेवा भाव से आसक्त होना है। सेवा बदल सकती है ना, अभी अविवाहित हो तो आपकी सेवा अलग है, विवाह होने के बाद में सेवा बदल सकती है, पति की सेवा आएगी, सासू की सेवा आएगी, बच्चों की सेवा आएगी, और वो और बड़े हो जाएंगे तो फिर वो दूसरी सेवा आ जाएगी आपकी, बहुत सारी सेवाएं बदल सकती हैं। हमारे एक जीवन में भी सेवाएं बदल सकती हैं, जैसे उम्र बदलती है, स्थिति बदलती है, सब बदल सकता है, लेकिन सेवा भाव नहीं बदलना चाहिए, सेवा में लगे रहना बदलना नहीं चाहिए। तो ये सब मैंने क्यों बताया, उनके जीवन में अभी एंड में हम देख रहे हैं कि गुरुजी उनसे इतने प्रसन्न हैं, इतने ऋणी हैं गुरुजी उनके, इतने कृतज्ञ हैं गुरुजी उसके प्रति, जीवन सफल हो गया उसका। पीछे का जाके ऑडिट करने का जरूरत नहीं है, अंत में अगर उसने अपने हृदय को पूर्णता गुरुजी को समर्पित कर दिया, पूरा 6 महीने तक इतना मेहनत किया गुरुजी के लिए, तो शायद जो मेहनत करके प्रयोजना बनाई थी गुरुजी को सेवा करने के लिए वो सब उध्वस्त हो गई ना। इतना बड़ा आयुर्वेद का प्लानिंग किया था उन्होंने, एक दिन पूरी मीटिंग हुई, जब नरसिंह बाबा पहुंचे ना वहाँ पर, वहाँ से इधर आ गए, वहाँ से शाम को उधर आ गए, और नेक्स्ट डे यहाँ पर उनका ऑपरेशन हो गया। वो पूरा दिन मीटिंग चलती रही और पूरा दिन गुरुजी के साथ मीटिंग में वो थे, फुल डे थे, रात तक थे, बड़ी लंबी योजना बना के रखी थी गुरुजी के हेल्थ के लिए बनाए रखी थी और पूरे जीवी के लिए बना के रखी थी, लेकिन उसी रात को उनकी मृत्यु हो गई। मतलब जो सारी योजना बनाई वो उध्वस्त हो गई कि नहीं, लेकिन गुरुजी ने बताया कि वो उध्वस्त होने पर भगवान उसको पूरा करने का योजना बनाएंगे, लेकिन इनकी जो भी भावना थी उसका फल भगवान को उनको देंगे। इसलिए बाहरी रूप से क्या हो रहा है उसका भी इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस किसका है, कॉन्शियसनेस का है। आपने सेवा अभी पूरी नहीं शायद की होगी, लेकिन सेवा करने की तीव्र इच्छा थी आपकी, पूरे समर्पित थे आप, करने ही वाले थे, उसमें कोई संदेह नहीं था, भगवान को उतना भी काफी है। भगवान की इच्छा से कोई ब्लाइंड भगवान ने चेंज भी कर दिया, सड़ले उठा के लेके गए, लेकिन सेवा भाव को भगवान देखते हैं, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, भावग्राही जनार्दन। आपने कितना बड़ा सेवा किया उसको देखते नहीं, वो कैसे किया उसको देखते हैं, कैसे किया उसको, किस भावना से किया। और वो केवल भगवान नहीं देखते हैं, भगवान के भक्त भी वैसे देखते हैं, हम और आप भी देखते हैं। आप जानते हैं ये ना बहुत काम करने में कुशल है लेकिन भाव सही नहीं है, कैपेसिटी बहुत है, ऐसा आप भी समझते हो। चार बालक आपके घर पे हैं, आप भी समझते हो ये है ना ये बहुत होशियार है, क्या क्या कर सकता है लेकिन करता नहीं है। और ये जो है ना एकदम इतना बुद्धू है, इतना होशियार भी नहीं है, लेकिन इसका सेवा भाव जो है ना बहुत बहुत लीन है ये आदमी, वो हम भी पहचानते ना। एक HOD भी जानता है इसमें विश्वासु कौन है, इसमें ट्रस्टवर्दी कौन है और इसमें कुशल कौन है, लेकिन बिल्कुल विश्वास का नहीं है, जानता है बराबर से वो। तो भगवान क्यों नहीं जानेंगे उसको, भक्त क्यों नहीं जानेंगे? उल्टा जितना भक्त शुद्ध होता है ना उतना वो लोगों को पहचानने लगता है अच्छी तरह से। जितना नदी का पानी स्वच्छ होता है उतना ज़्यादा उसके तल में क्या है वो दिखाई पड़ता है आपको, काला पत्थर है, गोरा पत्थर है कि नीला पत्थर है। जितना जल स्वच्छ हो जाता है उतना वास्तविकता जो है ना, असलियत, वो आपको दिखाई पड़ती है। उसी तरह से नदी का पानी स्वच्छ होता है, जितना स्वच्छ है उतना आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है, उसके अंदर क्या है, तल में क्या है, साइड में क्या है, बीच में क्या है, सब बना पड़ा, कौन सी मछली है, कितने क्या है। वैसे ही हृदय आपका जो है वो जितना शुद्ध होता है उतना आपको सबकी हकीकत वैसे के वैसे दिखाई पड़ती है। आप शायद रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आपको क्या दिखाई पड़ा है, लेकिन आपको पता चलता है सबका। इसलिए कहा गया है कि सरल और स्वच्छ हृदय व्यक्ति जो है ना वो सबको सबसे अधिक ज्यादा पहचानता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में राजेंद्र सुबेदी है, वो किसी भी व्यक्ति का रिपोर्ट आपको देगा, कौन लुच्चा है, कौन सही है, कौन प्रामाणिक है, कौन, उनसे मिलो आप। या बरसाने में जाओ और उनके वहां के जो रस मंदिर के भक्त लोग हैं उनसे मिलो, वो बराबर आदमी को पहचानते हैं, क्योंकि उनका हृदय बहुत सरल है ना। जब आपका आईना सरल है उसमें जो भी दिखता है वो आपको सरल साफ दिखाई पड़ेगा ना, वैसे कोई सिद्धि नहीं है उनके पास, केवल स्वच्छ हृदय है उनका। आपका हृदय लुच्चा है, कपटी है, तो आपको उसके अनुसार सब दिखाई पड़ेंगे। आपका चश्मा अगर हरा रंग का है तो सब आपको हरे रंग दिखाई पड़ेंगे। आप शायद पीला कपड़ा पहन के आओ लेकिन आपको भाई मुझे हरा रंग का ही दिखेगा, क्या आप हरा सब पहन के आए हो। आपका चश्मा अगर क्लीन है, साफ है, पारदर्शी है, तो आपको सब लोग ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, एज इट इज दिखाई पड़ेगा, एज इट इज जैसा है वैसा। तो इनके जो जीवन का एक ही रहस्य है कि उन्होंने जाने के पहले पूरे अपने जीवन को, चेतना को, बुद्धि को, मन को, भावना को गुरु के चरणों में अर्पण किया था, दिन रात उसमें ही लगे हुए थे। इसलिए गुरु जी ने कहा कि कोई लॉस नहीं है। गुरु जी ने एंड में ये भी कहा कि जो हुआ वो भी परफेक्ट हुआ है, क्योंकि इनकी श्रेष्ठ भावना को देख के भगवान ने उनको और कहीं श्रेष्ठ जगह पे लेके गए होंगे, और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसमें भगवान कमी नहीं करने देंगे। मुझे विश्वास है कि आयुर्वेद में जो भी आपको लगेगा कि आयुर्वेद तो अभी वो क्या होगा उसका, वो पूरा हो जाएगा, अभी पूरा हो भी रहा है वो। उनके गुरु जो आके उन्होंने सब कुछ संभाल लिया उसको, उनका आदमी दूसरा भेज रहे हैं उधर। तो आयुर्वेद की दृष्टि से जो भी कमियाँ हो सकती थी उनके जाने से वो भी परिपूर्ति हो गई है। गुरु जी का अभी हेल्थ का इतना बड़ा प्लान बनाया था, उसका क्या होगा उसका भी जाने के पहले ही गुरु जी का इंतजाम हो गया है पूरा, क्योंकि वो भी आए थे गुरु जी उनके, वो भी नाड़ी देख के सब प्लान बना के गए। हाँ, आयुर्वेद के गुरु जी। इसलिए हमारे दृष्टि से कोई लॉस बेनिफिट होता है ना, वो हमारी दृष्टि से अलग अलग होता है। अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक पत्नी का पति गुम हो गया, एक बच्ची का पिताजी गुम हो गया, एक परिवार का अर्निंग का साधन खत्म हो गया, एक प्रोजेक्ट का पूरा प्लानिंग खत्म हो गया, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो केवल हमारे तुम्हारे दृष्टि का परिणाम है। भगवान का जो प्लानिंग होता है ना वो फुल डिफरेंट लेवल पे होता है, उसको हमको श्रद्धा होनी चाहिए। उसमें जो हमको इम्परफेक्ट दिखाई पड़ता है उसको परफेक्टली कैसे देखें ये भी हमको सीखना चाहिए। और हम लोग केवल परफेक्ट देख सकते हैं अपने गुरुओं की नज़रों से। हमको वो इम्परफेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन हमारे गुरु जी को वो परफेक्ट नजर आ रहा है, तो हमको भी उसको परफेक्ट ही मानना चाहिए। हरे कृष्णा।